74। इन जुमला और निशानों के जो पेश गोई के तौर पर जहूर में आए वो पेश गोई है जो मैंने अख़वेम काजी ज़ियाउद्दीन साहिब काजी कोटी ज़िला गुजरांवाला के मुतालिक की थी, और मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस जगह खुद उनके ख़त की इबारत नकल कर दूँ जो इस पेश गोई के बारे में उन्होंने मेरी तरफ भेजा है, और वो ये है। मुझे यकीनी याद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बमा मार्च 1888 ईस्वी जबकि साजिश ने आपके दस्ते हक परस्त पर बैत की तो एक लंबी दुआ के बाद उसी वक्त आपने फरमाया था कि काजी साहेब आपको एक सख्त इब्तला पेश आने वाला है। चुनाचे इस पेश गोई के बाद इस साजिश ने कई अपने अजीज दोस्तों को इससे इब्तला भी दे दी कि हुज़ूर ने मेरी नस्बत और मेरे हक में एक इब्तलाई हालत की खबर दी थी। अब इसके बाद जिस तरह पर वो पेश गोई पूरी हुई वो वकूआ बयान ही अर्ज करता हूँ कि मैं हजरत अकदस से रवाना होकर अभी रास्ते में ही था कि मुझे खबर मिली कि मेरी अहलिया बारजा दर्द गुर्दा व कौलंज व कै मुफरत सख्त बीमार है। जब मैं घर पहुंचा और देखा तो वाकई में एक नाजुक हालत तारी थी, और अजीब तर यह कि शुरू बीमारी वही रात थी जिसकी शाम को हुजूर ने इस इब्तला से इत्तला दी थी। शिद्दत दर्द का ये हाल था कि जान हर दम डूबती जाती थी, और बेताबी ऐसी थी कि बावजूद कसीरुल हया होने के मारे दर्द के बेख्तियार उनकी चीखें निकलती थी और गली कूचे तक आवाज़ पहुँचती थी, और ऐसी नाजुक और दर्दनाक हालत थी कि अजनबी लोगों को भी वो हालत देख कर रहम आता था। शिद्दत मर्ज तखमीनन 3 माह तक रही। इस कदर मुद्दत में खाने का नाम तक न था, सिर्फ पानी पीती और कह कर देती। दिन रात में 50-60 दफा मतवातर कह होती, फिर दर्द कदरे कम हुआ मगर नादान तबीबों के बार बार फसद लेने से हजाल मुफरत की मर्ज मुस्तकिल तौर पर दामनगीर हो गई। हर वक्त जहाँ बलब रहती 10-11 दफा तो मरने तक पहुँच कर बच्चों और अजीज अकरबा को पूरे तौर पर अलविदाई गम वलम से रुलाया। 11 महीने तक तरह तरह के दुखों की तख्ता मश्क रहकर आखिर कुशादा पेशानी बहोश तमाम कलमा शरीफ पढ़कर 28 बरस की उम्र में सफर जावेदानी इख्तियार किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इस हादसा जानका के दरमियान एक शीरखार बच्चा रहमतुल्ला नाम भी दूध ना मिलने के सबब से भूखा प्यासा राहिए मुल्क बका हुआ। अभी ये जख्म ताज़ा ही था कि आज इसके 2 बड़े बेटे अब्दुल रहीम व फैज रहीम तप मुहरका से साहिब फराश हुए। फैज रहीम को तो अभी 11 दिन पूरे ना होने पाए कि उसका प्याला उम्र का पूरा हो गया, और 7 साल उम्र में दाई अजल को लब्बैक कहकर जल्दी से अपनी प्यारी माँ को जा मिला, और अब्दुल रहीम तप मुहरका और सरसाम से बराबर 2-2.5 महीने बेहोश मैयत की तरह पड़ा रहा। सब तबीब ला इलाज समझ चुके, कोई ना कहता था कि ये बचेगा, लेकिन चूंकि जिंदगी के दिन बाकी थे बूढ़े बाप की मुस्तरबाना दुआएं खुदा ने सुन ली और महज उसके फजल से सही सलामत बच निकला। अगरचे पट्ठों में कमजोरी और जुबान में लुकनत तभी बाकी है, ये हवादिस से जान का तो एक तरफ, उधर मुखालिफों ने और भी शोर मचा दिया था। आबरू रेजी और तरह तरह के माली नुकसानों की कोशिशों में कोई दकीका उठा ना रखा। गरीब खाने में नकब जनी का मामला भी हुआ। अब तमाम मुसीबतों में यकजाई तौर पर गौर करने से बखूबी मालूम हो सकता है कि आज इस जराकिम किस कदर बली दिल दोज सीना जोज में मुबतला रहा है, और यह सब उन्हीं आफात व मसाइब का जहूर हुआ जिसकी हजूर ने पहले से ही मुजमल तौर पर खबर कर दी थी। इसी असना में हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने अज़राए नवाज़िश ताज़ियत के तौर पर एक तसल्ली दहिंदा चिट्ठी भेजी, वो भी एक पेशगोई पर मुश्तमिल थी जो पूरी हुई और हो रही है। लिखा था कि वाकिया में आपको सख्त इब्तिला पेश आया, ये सुन्नतुल्ला है ताकि वो अपने मुस्तकीमुल हाल बंदों की इस्तिकामत लोगों पर जाहिर करे और ताकि सब्र करने से बड़े बड़े अजर बख्शे। खुदा ताला इन तमाम मुसीबतों से मुखलसी इनायत कर देगा, दुश्मन जलील ख्वार होंगे, जैसा कि सहाबा के ज़माने में हुआ कि खुदा ताला ने उनकी डूबती कश्ती को थाम लिया, ऐसा ही इस जगह होगा, उनकी बददुआएं आखिर उन्हीं पर पड़ेंगी। सो बारे अल्हम्दुलिल्लाह कि हुजूर की दुआ से ऐसा ही हुआ। आज इस हर हाल इस्तिकामत और सब्र में बढ़ता गया, बावजूद बशरियत अगर कभी मुदाहना के तौर पर मुखालिफों की तरफ से सुलह सफाई का पैगाम आया तो बदी ख्याल कि फिर ये अम्बिया की मुसीबतों से हिस्सा कहाँ, दिल में ऐसी सुलह करने से एक कबज सी वारद हो जाती। और मैंने बचश्मे खुद मुखालिफों की ये हालत देखी और देख रहा हूँ कि उनकी वो खुश्क वहाबियत भी रुखसत हो चुकी, किताब सुन्नत से तमस्सुक की कोई परवाह नहीं, और दुनिया भी शब रोज हाथों से जा रही है जिसके घुमंड से गुरबा को तकलीफें दी थी। गरज दुनिया दीन दोनों खो रहे हैं, ख्वार और शर्मिंदा हैं। हुजूर की वो पेशगोई जो उनके एडवोकेट के हक में फरमाई थी कि इन्नी मुहीन उन मन अरादा इहाना तक, मुनासबत के लिहाज से हसब किस्मत सब बराबर इससे हिस्सा ले रहे हैं, जैसा कि तमाम हमर सर गवाह हैं। राकिम मिस्कीन ज़ियाउद्दीन उपयान हो काजी कोटी जिला गुजरांवाला। 75 मीन जुमला नहायत ज़बरदस्त निशानों के जो खुदा ताला ने गैब गोई और मारिफ़ आलिया के रंग में मेरी तायद में ज़ाहिर फरमाए, ब्राहिन अहमदिया की वो पेश गोई है जो उसके सफ़ा 496 में दर्ज है, यानी या आदम उसकुन अंता वज़ौजुकल जन्ना अरदतु अन अस्तख़लिफ़ा फ़ख़लक़तु आदमा। इस इजमाल की तफसील ये है कि ये इल्हाम जो मेरी नस्बत हुआ, यानी या आदम उसकुन अंता वज़ौजुकल जन्ना अरदतु अन अस्तख़लिफ़ा फ़ख़लक़तु आदमा, जिसकी ये मानी है कि ए आदम तू अपने जोड़े के साथ जन्नत में रह, मैंने चाहा कि मैं अपना मदर दिखलाऊँ इसलिए मैंने इस आदम को पैदा किया। ये इस बात की तरफ इशारा है कि आदम सफ़ीउल्लाह के वजूद का सिलसिला दौरिया इस आजिज के वजूद पर आकर ख़त्म हो गया। ये बात अहले हकीकत और मारिफत के नज़दीक मुसल्लम है कि मुरातब वजूद दौरिया हैं, यानी नौ इंसान में से बाज़ की खूह और तबीयत पर आते रहते हैं, जैसा कि पहली किताबों से साबित है कि एलिया याहिया नबी की खूह और तबीयत पर आ गया, और जैसा कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम की खूह और तबीयत पर आए। आशिया ये मुहक्कक कमर है कि हमारे सैयद मौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खूह और तबीयत पर आए थे। मसलन जैसा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद से मोहब्बत करके अपने तहीं आग में डाल दिया और फिर कुल ना या नार उकूनी बर्दम व सलामा की आवाज़ से साफ बच गया, ऐसे ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तहीं तौहीद के प्यार से इस फितने की आग में डाल दिया जो आ जनाब की बास के बाद तमाम कौमों में गोया तमाम दुनिया में भड़क उठी थी। और फिर आवाज़ वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास से जो खुदा की आवाज़ थी, इस आग से साफ बचाए गए, ऐसे ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बुतों को अपने हाथ से तोड़ा जो खाना काबा में रखे गए थे, जिस तरह हज़रत इब्राहिम ने भी बुतों को तोड़ा, और जिस तरह हज़रत इब्राहिम खाना काबा के बानी थे, ऐसा ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की तरफ तमाम दुनिया को झुकाने वाले थे, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा की तरफ झुकने की बुनियाद डाली थी, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुनियाद को पूरा किया। आपने खुदा के फजल और करम पर ऐसा तवक्कुल किया कि हर एक तालिबे हक को चाहिए कि खुदा पर भरोसा करना आ जनाब से सीखे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस कौम में पैदा हुए थे जिनमें तौहीद का नामो निशान ना था और कोई किताब ना थी। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कौम में पैदा हुए जो जाहिलियत में गर्क थी और कोई रब्बानी किताब उनको नहीं पहुँची थी। और एक ये मुशाबियत है कि खुदा ने इब्राहिम के दिल को खूब धोया और साफ़ किया था, यहाँ तक कि खेशों और अकारिब से भी खुदा के लिए बेदार हो गया और दुनिया में मजूस खुदा के उसका कोई भी ना रहा। ऐसा ही बल्कि इससे बढ़कर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाकयात गुजरे, और बावजूद है कि मक्का में कोई ऐसा घर ना था जिससे आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई शोभा करावत ना था, मगर खालिस खुदा की तरफ बुलाने से सब के सब दुश्मन हो गए और बजूस खुदा के एक भी साथ ना रहा। फिर खुदा ने जिस तरह इब्राहिम को अकेला पाकर इस कदर औलाद दी जो आसमान के सितारों की तरह बेशुमार हो गई, इसी तरह आंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला पाकर बेशुमार इनायत की, और वो साहबा आपकी रफाकत में दिए जो नजूम उस समा की तरह न सिर्फ कसीर थे बल्कि उनके दिल तौहीद की रोशनी से चमक उठे थे। गरज जैसा कि सूफियों के नज़दीक माना गया है कि मरातिब वजूद दौरिया हैं, इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी खूह और तबीयत और दिली मुशावियत के लिहाज से करीबन 2500 बरस अपनी वफात के बाद फिर अब्दुल्ला पिसर अब्दुल मुत्तलिब के घर में जन्म लिया और मोहम्मद के नाम से पुकारा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मरातिब वजूद का दौरिया होना कदीम से और जब से कि दुनिया पैदा हुई सुन्नतुल्लाह में दाखिल है। नौए इंसान में खान एक हों या बद हों, यही आदतुल्लाह है कि उनका वजूद खूह और तबीयत और तशाबह कुलूब के लिहाज से बार बार आता है, जैसा कि आयत तशाबहत कुलूबहुम उसकी मुसद्दिक है। और तमाम सूफियों का ये ख्याल है कि अगरचे मरातिब वजूद दौरी हैं मगर महदी माहूद बरूजात के लिहाज से फिर दुनिया में नहीं आएगा, क्योंकि वो खातमुल औलाद है और उसके खात्मे के बाद नस्ल इंसानी कोई कामिल फर्जंद पैदा नहीं करेगी बाइस्तस्ना उन फर्जंदों के जो उसकी हयात में हो, क्योंकि बाद में बहाइम सीरत लोगों का गलबा होता जाएगा यहाँ तक कि खुदा ताला की मोहब्बत बिल्कुल दिलों से जाती रहेगी और नफ्स परस्त और शिकम परस्त बन जाएंगे। ये बाज़ अकाबिर औलिया के मुकाशफात हैं, और अगर अहादीस नबविया को बनज़र गौर देखा जाए तो बहुत कुछ उनसे इन मुकाशफात को मदद मिलती है, लेकिन ये कौल उसी हालत में सही ठहरता है जबकि महदी माहूद और मसीह माहूद को एक ही शख्स मान लिया जाए। और याद रहे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की दो हदें मुकर्रर कर दी हैं और फरमा दिया है کہ وہ امت دلالت سے محفوظ ہے جس کے اول میں میرا وجود اور آخر میں مسیح موعود ہے، یعنی ایک طرف وجود باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار روئی ہے اور دوسری طرف وجود بابرکت مسیح موت کی دیوار دشمن کش ہے۔ اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اپنی امت میں داخل نہیں سمجھا جو مسیح موت کے زمانے کے بعد ہوں گے، اور مسیح موت کا زمانہ اس حد تک ہے جس حد تک اس کے دیکھنے والے یا دیکھنے والوں کے دیکھنے والے اور یا پھر دیکھنے والوں کے دیکھنے والے دنیا میں پائے جائیں گے اور اس کی تعلیم پر قائم ہوں گے۔ غرض قرون ثلاثہ کا ہونا برآیت منہاج نبوت ضروری ہے، اور پھر نیکی اور پاکیزگی کا خاتمہ ہے، اور بعد میں اس گھڑی اور اس ساعت الفنا کی انتظار ہے جس کا علم مجوس خدا تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی نہیں۔ من ہو اسی سر کے لحاظ سے یہ ملت محمدی ابراہیمی ملت کہلائی سو ضرور تھا کہ مرتبہ آدمیت کی حرکت دوری زمانے کے انتہا پر ختم ہوتی، تو یہ زمانہ جو آخر الزمان ہے، اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے ایک شخص کو حضرت آدم علیہ السلام کے قدم پر پیدا کیا جو یہی راکم ہے، اور اس کا نام بھی آدم رکھا جیسا کہ مندرجہ بالا الہامات سے ظاہر ہے۔ اور پہلے آدم کی طرح خدا نے اس آدم کو بھی زمین کے حقیقی انسانوں سے خالی ہونے کے وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں جلالی اور جمالی سے پیدا کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، کیونکہ دنیا میں کوئی روحانی انسان موجود نہ تھا جس سے یہ آدم روحانی تولد پاتا، اس لیے خدا نے خود روحانی باپ بن کر اس آدم کو پیدا کیا، اور ظاہری پیدائش کے روح سے اسی طرح نر اور مادہ پیدا کیا جس طرح کے پہلا آدم پیدا کیا تھا، یعنی اس نے مجھے بھی جو آخری آدم ہوں جوڑا پیدا کیا، جیسا کہ الہام یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ میں اس کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ اور بعض گزشتہ اکابر نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر یہ پیشگوئی بھی کی تھی کہ وہ انتہائی آدم جو مہدی کامل اور خاتم ولایت عامہ ہے اپنی جسمانی خلقت کے روح سے جوڑا پیدا ہوگا، یعنی آدم صفی اللہ کی طرح مذکر اور مونس کی صورت پر پیدا ہوگا اور خاتم الاولاد ہوگا، کیونکہ آدم نوع انسان میں سے پہلا مولود تھا، سو ضرور ہوا کہ وہ شخص جس پر بکمال و تمام دورہ حقیقت آدمیہ ختم ہو وہ خاتم الاولاد ہو، یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ نکلے۔ اب یاد رہے کہ اس بندہ حضرت آدیت کی پیدائش جسمانی اس پیشگوئی کے مطابق بھی ہوئی، یعنی میں توام پیدا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا نام جنت تھا، اور یہ الہام کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ جو آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ کے صفحہ 496 میں درج ہے، اس میں جو جنت کا لفظ ہے اس میں یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ لڑکی کے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نام جنت تھا، اور یہ لڑکی صرف 7 ماہ تک زندہ رہ کر فوت ہو گئی تھی۔ غرض چونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام اور الہام میں مجھے آدم صفی اللہ سے مشابہت دی، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس قانون قدرت کے مطابق جو مراتب وجود دوریہ میں حکیم مطلق کی طرف سے چلا آتا ہے، مجھے آدم کی خو اور طبیعت اور واقعات کے مناسب حال پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ واقعات جو حضرت آدم پر گزرے، من جملہ ان کے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش زوج کے طور پر تھی، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ تھی، اور اسی طرح پر میری پیدائش ہوئی، یعنی جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں، میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا، اور یہ میری پیدائش کی وہ طرز ہے جس کو بعض اہل کشف نے مہدی خاتم الولایت کی علامتوں میں سے لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ وہ آخری مہدی جس کی وفات کے بعد اور کوئی مہدی پیدا نہیں ہوگا خدا سے براہ راست ہدایت پائے گا جس طرح آدم نے خدا سے ہدایت پائی، اور وہ ان علوم اور اسرار کا حامل ہوگا جن کا آدم خدا سے حامل ہوا، اور ظاہری مناسبت آدم سے اس کی یہ ہوگی کہ وہ بھی زوج کی صورت پیدا ہوا، یعنی مذکر اور مونس دونوں پیدا ہوں گے، جس طرح آدم کی پیدائش تھی کہ ان کے ساتھ ایک مونس بھی پیدا ہوئی تھی یعنی حضرت حوا علیہ السلام، اور خدا نے جیسا کہ ابتدا میں جوڑا پیدا کیا مجھے بھی اس لیے جوڑا پیدا کیا کہ تاولیت کو آخریت کے ساتھ مناسبت تام پیدا ہو جائے، یعنی چونکہ ہر ایک وجود سلسلہ بروزات میں دور کرتا رہتا ہے اور آخری بروز اس کا بنسبت درمیانوی بروزات کے اتم اور اکمل ہوتا ہے، اس لیے حکمت الہیہ نے تقاضا کیا کہ وہ شخص کہ جو آدم صفی اللہ کا آخری بروز ہے وہ اس کے واقعات سے اشد مناسبت پیدا کرے۔ سو آدم کا ذاتی واقعہ یہ ہے کہ خدا نے آدم کے ساتھ حوا کو بھی پیدا کیا، سو یہی واقعہ بروز اتم کے مقام میں آخری آدم کو پیش آیا کہ اس کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا کی گئی، اور اسی آخری آدم کا نام عیسیٰ بھی رکھا گیا، تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ حضرت عیسیٰ کو بھی آدم صفی اللہ کے ساتھ ایک مشابہت تھی، لیکن آخری آدم جو بروزی طور پر عیسیٰ بھی ہے آدم صفی اللہ سے اشد مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ آدم صفی اللہ کے لیے جس قدر بروزات کا دور ممکن تھا وہ تمام مراتب بروزی وجود کو طے کر کے آخری آدم پیدا ہوا ہے، اور اس میں اتم اور اکمل بروزی حالت دکھائی گئی ہے، جیسا کہ براہین احمدیہ کی صفحہ 505 میں میری نسبت ایک یہ خدا کا کلام اور الہام ہے کہ خلق آدم فاکرمہ، یعنی خدا نے آخری آدم کو پیدا کر کے پہلے آدموں پر ایک وجہ کی اس کو فضیلت بخشی۔ اس الہام اور کلام الہی کے یہی معنی ہیں کہ گو آدم صفی اللہ کے لیے کئی بروزات تھے جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، لیکن یہ آخری بروز اکمل اور اتم ہے۔